शुद्ध रचना का दूसरा आविर्भाव विभावश अर्थात ईश्वर के अवतार हैं। उनके दो प्रकार हैं। पहला, जब विष्णु स्वयं एक भावातीत देह के साथ अवतार पृष्ठ संख्या 33 लेते हैं, और दूसरा, जब स्वाभाविक देह में बंधी आत्मा विष्णु की शक्ति से पूरित हो जाती है। अवतार के दो अन्य रूप हैं, एक तो अंतर्यामी आत्माओं के आंतरिक शासक के रूप में और दूसरा अर्च मूर्तियों में विष्णु के आविर्भाव के रूप में। व्यूह अपनी रचनात्मक गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जिसके द्वारा अशुद्ध ब्रह्मांड कई चरणों में अस्तित्व में आता है। सर्वप्रथम कुतस्थ पुरुष और माया विकसित होते हैं, फिर कुतस्थ माया में चला जाता है और शक्ति का सिद्धांत विकसित होता है, जो नियति काल सत्व रज और तम का नियमन करता है। कुतस्थ पुरुष की निकटता और काल के परिपक्व स्वप्रभाव के कारण मूल प्रकृति से महत या ब्रह्मांडीय विश्वास अचेतन विकसित होता है। महत से अहंकार, अहंकार से मन और 10 अनुभूतियां 5 गुणों के साथ 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। सृष्टि के अंतिम चरण में पुरुष के प्रभाव में तत्व संयुक्त होते हो जाते हैं और ब्रह्मांड के डिंब बन जाते हैं, जिसमें से सनकादि युवा रुद्रगण और प्रजापतिगण 7 घेर से घिरा 14 वृत्तों वाला ब्रह्मांड और 5 प्रकार की आत्माएं व्यास्ति नित्य मुक्त केवल मुमुक्ष और बद्ध आत्माएं निकल कर आते हैं। संसार में आत्मा स्वयं को बंधन में पाती है। पदार्थ के साथ जुड़ने से 3 विकृतियां प्राप्त होने के कारण उसकी मूल प्रकृति धुंधली हो जाती है। वह पूर्णता शक्ति ज्ञान के अपने मूल गुणों को खो देती है और वहमित अकिंचन और अज्ञात्व हो जाती है। ये विकृतियां लगाव और कामना पैदा करती हैं और आत्मा को संसार और पुनर्जन्म की ओर ले जाती है। धुंधलापन ज्ञान से खत्म हो सकता है, जो विष्णु के महान अनुग्रह से प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है वर्णाश्रम धर्म का पालन, गुरु के मार्गदर्शन में मंत्र और योग करना, आराधना और भक्ति विमुक्त की नियति है, वैकुंठ में वास करना और विष्णु के चरणों में रहकर शाश्वत परमानंद का आनंद लेना। सृष्टि के काल के बाद विनाश का काल आता है, जब ब्रह्मांड उसी विष्णु में विलीन हो जाता है जहां से वह प्रारंभ हुआ था। शैव संप्रदाय की स्थापना लकुलीन या लकुलीश द्वारा ईसा पूर्व 2 सदी में की गई थी। बाद में यह अनेक विचारधाराओं में विभाजित हो गया, जिन्हें 2 समूहों में रखी जा सकती है। 1 शैव पाशुपत कापालिक और कालामुख, 2 स्पंद शास्त्र प्रतिभिज्ञा शास्त्र और शिव सिद्धांतश काश्मीर। पहले समूह में के शैव संप्रदायों का दार्शनिक आधार 3 सिद्धांत है, पति पशु और पास। शिव ऐसा ईश्वर है जिसके पास ऐसी देह है जो 5 शक्तियों से बनी होती है, रचना रक्षा विनाश प्रच्छन्न और हितकारी। आत्मा क्रियाशील आत्मचेतन स्वचालित और ईश्वर के समकक्ष शाश्वत होती है। वह ईश्वर की पृष्ठ संख्या 34 चकाचौंध करने वाली शक्ति के द्वारा 4 पाशों में बंध जाती है। ये पाश है मल कर्मन माया और रोध शक्ति। ये पाश ईश्वर की उदार शक्ति से अच्छे कर्मों के द्वारा हटाए जा सकते हैं। अच्छे कर्म है मंत्रोच्चार संध्या पूजा जप हवन और अनुशासन। योग या ध्यान श्वास को शरीर में चक्रों में रोक कर किया जाता है। मूलाधार चमत्कारी शक्ति प्राप्त करना तल्लीनता एकाग्रता समाधि। इस अनुशासन में तप मूर्तियों या लिंगों की स्थापना माला का उपयोग दाह कर्म और अन्य क्रियाएं हैं। मुक्त आत्मा शिव से ही एकाकार हो जाती है और शिव में अपनी व्यक्तिकता बनाए रखती है। पाशुपतों का लक्ष्य एक रहस्यात्मक एकात्मता थी, जो पवित्र मंत्रों ध्यान और सभी कर्मों के त्याग से मिलता है, जिससे संवेद की स्थिति प्राप्त होती थी। धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने के लिए वे एक विधि काम में लाते थे, जिसमें दिन में 3 बार शरीर पर भभूत मलना, हंसी गायन नृत्य कामुक क्रियाओं, जोर से आवाज करना, अजीब सी हलचल करना और कुछ सूत्रों को धीमे स्वर में दोहराना शामिल था। उनके आचरण का नियम विलोमात्मक था। उन्हें वह सब करना होता था जो सभी के द्वारा निंदित था, जैसे कि किसी में यह भेद करने का ज्ञान न हो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उन्हें अवितद भाषण करना होता था। कापालिक और कालामुख लोग अनावश्यक अति तक आचरण करते थे। वे कापालों की माला पहनते थे, डंडे और भाले रखते थे, मध्य पात्र रखते थे, राग का भक्षण करते थे और रक्त रंजित अनुष्ठान संपन्न करते थे। दूसरा समूह जो मूलतः कश्मीर का था, वहां से दक्षिण और सुदूर दक्षिण में फैल गया। स्पंद शास्त्र कहता है कि आत्मा गहन योग साधना से ज्ञान प्राप्त करती है। इससे ब्रह्मांड के परमात्मा परम शिव से साक्षात्कार होता है और व्यक्तिगत आत्मा शांति और आनंद के रहस्यात्मक परमानंद में डूब जाती है। प्रत्यभिज्ञ आत्मा अपने गुरु के द्वारा प्रशिक्षित अपने स्वयं के सहज बोध से स्वयं को ईश्वर मान लेती है और इसलिए ईश्वर के साथ एकाकार होने के रहस्यात्मक परमानंद में विश्राम करती है। ज्ञान मार्ग जो सभी संप्रदायों में समान है, योग के अनुशासन के जरिए आत्मज्ञान और परमात्मा से आत्मा के एकाकार होने के अनुभव का लक्ष्य प्राप्त कराता है। मुक्ति पाने का तीसरा मार्ग है भक्ति मार्ग। भक्ति को प्रेम भावना के साथ व्यक्ति गत देवता की पूजा के रूप में एक व्यक्तिगत ईश्वर में व्यक्तिगत विश्वास, उसके प्रति वैसा ही प्रेम जैसा मनुष्य के प्रति होता है, उसकी सेवा में हर वस्तु का समर्पण और ज्ञान त्याग या कार्यों के बदले इसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ संख्या 35। पूजनीय के गुणों का ज्ञान प्राप्त होने के बाद ईश्वर पर केंद्रित स्नेह के रूप में परिभाषित किया गया है। भक्ति धर्म का भावनात्मक पहलू है। उसकी जड़ें मानव की चेतना की अनुभूति या प्रभावी पक्ष में होती हैं, जैसे कि ज्ञान की जड़ें संज्ञानात्मक या बौद्धिक पक्ष में होती है और कर्म की कार्य में या इच्छा में होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह असंभव है कि इन तीनों पहलुओं में से कोई एक किसी धार्मिक प्रणाली से एकदम अनुपस्थित हो, किंतु यह संभव है कि दूसरे पक्ष की तुलना में किसी एक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया जा रहा हो और इतिहास के किसी काल में इच्छा, बुद्धि या भावना लोगों के मस्तिष्क पर हावी रही हो। इस अर्थ में भक्ति की धारा जो वैदिक काल में एक छोटे से झरने के रूप में शुरू हुई, इतिहास के बढ़ने के साथ ही एक प्रबल बाढ़ के समान हो गई और पूरे देश में छा गई। इस झरने के उद्गम की और उसकी सहायक धाराओं की पड़ताल करना जरूरी है, क्योंकि इस धारा का अनुगमन करने से ही भारत के धार्मिक इतिहास के मुख्य विकास को समझा जा सकता है। भक्ति मार्ग की सबसे पहली लिखित कृति भगवद गीता है। फिर इसकी भक्ति का स्वरूप क्या है? कृष्ण उपदेश देते हैं कि ईश्वर के प्रति भक्ति रखने से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ईश्वर इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसे भक्ति पूर्वक जो कुछ भी दिया जाता है उसे वह स्वीकार कर लेता है। एक पत्ता, एक फूल, एक फल, एक पानी। भक्ति का तात्पर्य है सभी कर्मों का ईश्वर को समर्पण, क्योंकि भक्त ईश्वर में ही रहते हैं और उसी में उनका अस्तित्व होता है। ईश्वर अपनी कृपा अपने भक्तों को प्रदान करता है, क्योंकि पापी उपासक को भी यह आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें सद्गुणी माना जाएगा, बशर्ते कि वे अखंड हृदय से भक्ति करें, और यह भी आश्वासन दिया जाता है कि वे कभी नष्ट न होंगे। ईश्वर की दृष्टि में सभी भक्त समान होते हैं, चाहे वे पापी पैदा हुए हों या नहीं, और चाहे वे किसी भी जाति या संप्रदाय के हों। भक्ति से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश किया जा सकता है। भक्ति रहस्यात्मक दृष्टि का और एकाकार होने का जरिया है। भक्त ईश्वर को प्रिय होता है, वह उसे अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि ईश्वर पिता, पति, माता और मित्र है। भक्ति के धर्म के तत्व ये हैं: एक व्यक्तिगत देवता, दैवी कृपा, भक्त का आत्मसमर्पण और प्रेम, सभी जाति और पंथ के लोगों की मुक्ति का वादा और रहस्यात्मक एकीकरण। श्वेताश्वर उपनिषद एक और बात शामिल करता है, गुरु के प्रति वैसी ही भक्ति जैसे ईश्वर के प्रति होती है। महाभारत के शांति पर्व का नारायणीय खंड अगली महत्वपूर्ण कृति है। इसमें पृष्ठ संख्या 36 एकांतिक धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें कर्म कांड के ध्यान और जप, अगरबत्ती जलाना, मस्तिष्क शब्द और कर्म से पूजा आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन लोगों का अपने आराध्य से साक्षात्कार होता है जिनमें विश्वास और भक्ति होती है और जिन्होंने उनकी कृपा प्राप्त कर ली है। उसमें कहा जाता है कि भक्ति का धर्म ज्ञान या वैदिक कर्मकांड से श्रेष्ठ है और इसमें नारायण या उसके किसी व्यूह की आराधना की जाती है। नारायणी के विचार पंचरात्र संहिता में ज्यादा पूर्णता से बताए गए। यह ज्ञान के अलावा आराधना और योग के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। यह न्यास या भक्ति को मुक्ति का माध्यम मानता है। संहिता के अनुसार भक्ति का अर्थ है चिंतन रूपी प्रार्थना की शरण लेना। मैं पापों का पात्र हूँ, निकृष्ट असहाय हूँ, क्या तुम मेरा उपाय बनोगे। शरण में जाने का अर्थ है उपवास, तीर्थयात्रा, यज्ञ, दान और आत्मत्याग, जो कि सर्वोच्च होता। पंचरात्र के अलावा भक्ति का अन्य प्रणालियों में भी समानांतर विकास हुआ, किंतु उनमें से सबसे महत्वपूर्ण योगदान महायान शाखा के बौद्ध धर्म का था। अब महायान भक्ति बुद्ध और बोधिसत्वों के आसपास विचरने लगी। यह खास तौर से अमिताभ के साथ हुआ, जिसे शाश्वत ईश्वर माना जाता है, जो सुखदाई स्वर्ग में आवास करते हैं, वहां जहां भक्त लोग अमिताभ की कृपा और पवित्र संतों की सहायता से जाते हैं। एतव के भक्तों का उद्देश्य निर्वाण नहीं होता, बल्कि स्वर्ग में अमिताभ की उपस्थिति में प्रविष्ट होना है। इन लोगों की भक्ति में स्तूपों और मंडलों की पूजा, उपवास और तीर्थयात्रा, पापों को नष्ट करने के लिए सामूहिक प्रार्थनाएं, सूत्रों का पाठ और बुद्ध के नाम का स्मरण आदि होते हैं। बौद्ध धर्म ने धर्म की प्रजातांत्रिक पर, शूद्रों और महिलाओं के लिए आध्यात्मिक अधिकार पर और लोक भाषाओं के जरिए धर्म का उपदेश देने पर जोर दिया। इसने श्रमणों के लिए, संघों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भारत के इतिहास के मुस्लिम पूर्व काल में भारतीय धर्मों का सर्वेक्षण पूरा होने के बाद अब यह अनुमान लगाना शेष है कि भारत के लोगों के जीवन में धर्म के तीन मार्गों में से प्रत्येक मार्ग का तुलनात्मक महत्व क्या था। धर्म में कर्म कांड सबसे अधिक व्यापक था, चाहे यह कर्म कांड वैदिक या ब्राह्मणवादी या पौराणिक साहित्य में निर्धारित उच्चतर प्रकार का हो या जादू टोना और आदिम पूजा वाले निम्न प्रकार का हो। प्रमाण दोहराने की जरूरत नहीं है। पवित्र और निरपेक्ष साहित्य, विदेशी यात्रियों के अवलोकन, पुरातात्विक खोजें और आधुनिक स्थितियों के प्रमाण सभी इसकी पुष्टि करते हैं। द्विजों अर्थात उच्च वर्गों के घरों में घरू अनुष्ठानों का पालन और निचले वर्ग के लोगों के धर्म में ज्यादातर अशुभ देवी देवताओं, रुद्र और शक्ति के विभिन्न रूपों की तरह की पूजा की जाती है। बहुसंख्यक लोगों पृष्ठ संख्या 37 के लिए मुक्ति का मार्ग अच्छे मार्ग, कर्मों और उत्सव का धर्म था। चुनिंदा लोगों के लिए इसका तात्पर्य था ईश्वरेच्छा अर्थात दैवी कानून के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए इच्छाओं का रूपांतरण। आम लोगों के लिए इसका मतलब था कठोर औपचारिकताएं और आबादी के सबसे निचले वर्ग के लिए मूर्खतापूर्ण अंधविश्वास। ज्ञान का धर्म केवल विद्वानों, दार्शनिकों और साधुओं तक सीमित था और चूंकि यह मार्ग उन लोगों की रुचि के अनुकूल था जो मुख्यतः पुस्तकों के लेखन से संबंध रखते थे, यह मार्ग प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य में स्वाभाविक रूप से छाया हुआ है। पंडित और साधु चाहे जिस पंथ के हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय आदि सभी की मानसिकता एक सी थी और गहन साधना और तपस्या के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाना उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। इसलिए ज्ञान मार्ग का महत्व कर्म मार्ग के बाद आता है। प्रबुद्ध वर्ग में उसका प्रभाव बहुत था और उनसे छन कर हजारों रूपों में या नीचे के वर्गों में आया। प्रेम मार्गी भक्ति का धर्म स्पष्टतः तीनों में सबसे कम लोकप्रिय था। भगवद गीता और महाभारत के नारायणी खंड के अतिरिक्त उत्तर भारत के हिंदू धर्म के मुस्लिम पूर्व पवित्र साहित्य में उसका शायद ही कहीं उल्लेख है। महायान बौद्ध धर्म के आख्यानों में और शैव पांचरात्र और शाक्त साहित्य में भक्ति को ज्ञान की तुलना में बहुत नीचा स्थान दिया गया है। विष्णु या भगवत की पूजा और अमिताभ और शिव के प्रति भक्ति में एक भावनात्मक स्पर्श है, किंतु उनमें भावातिरेक और आस्वाद की उस भावना भयानक चमक की कमी है जिसमें भयानक कामुकता या स्वर्गिक आनंद की ओर मुड़ जाने की प्रवृत्ति है। ये बातें बाद में विकसित हुई और आगामी अध्यायों में उनके दोनों पहलुओं गंभीर और काव्यात्मक या विस्फोटक के इतिहास की चर्चा की जाएगी। यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि बाद के कालों में धार्मिक विकास की प्रवृत्ति भावुकता की ओर और इच्छा और बुद्धि दोनों को आप्लावित करने वाले अनुराग के रूपांतरण की ओर है। अनुष्ठान और समारोह सदैव एक से रहते हैं, दर्शन नया रास्ता बना लेते हैं, किंतु भक्ति अनगिनत अभिव्यक्तियों में मुखर होती है और प्रचुर रूपों में आनंद लेती है।